नमस्कार भारत, आज है 21 जून दिन बुधवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ब्रसल्स में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध आत्मघाती हमलावर को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में योग करेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की दावेदारी ने क्या चौंका दिया है विपक्ष को?
चौंका नहीं दिया है, उलझा दिया है। आदर्श स्थिति थी कि श्री कोविंद के नाम की मोहर विपक्षी दलों से लगवाने का प्रयास, जैसा कि
गोरखालैंड में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। विरोध की जड़ में है भाषा।
ये तो गवर्नमेंट को, राजनीतिक दल को उसको समझना चाहिए, भाषा के साथ में कोई भी खिलावट नहीं, किसी भी भाषा के साथ। भाषा अपना मदर लैंग्वेज, और माँ को आप अपमान करेंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही।
अनिल कुंबले के कोच पद छोड़ने के कारणों की भी होगी चर्चा, मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। बेल्जियम में राजधानी ब्रसेल्स के एक रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर को सैनिकों ने गोली मार दी। पुलिस ने कहा है कि वह विस्फोटक बेल्ट जैसी कोई चीज पहने हुए था और उसने एक छोटा धमाका किया था। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उसकी मौत हो गई है। हालांकि उसकी पहचान के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। घटना के बाद ब्रसेल्स के सेंट्रल स्टेशन और पास के पर्यटकों की मौजूदगी वाले चौक को खाली करा लिया गया। ब्रसेल्स में पिछले साल मार्च में एयरपोर्ट और मेट्रो पर हुए हमले में 32 लोगों की मौत हो गई थी। कतर संकट की मार अब पालतू पशुओं पर भी पड़ रही है। सऊदी अरब ने कतर नागरिकों के ऊंटों और भेड़ों को अपनी चरागाहों से निकालकर कतर सीमा पर लाकर छोड़ दिया। कतर के नागरिक वर्षों से अपने पशुओं को सऊदी अरब में रखते हैं क्योंकि इस छोटे से देश में पर्याप्त चरागाह नहीं हैं। उधर अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह समझ नहीं आता कि अरब देशों ने अब तक क्यों उन चिंताओं के ब्यौरे सार्वजनिक नहीं किए हैं जिनकी वजह से कतर का आर्थिक राजनीतिक बहिष्कार किया गया। मंत्रालय की प्रवक्ता हीदर नॉट ने कहा, अब प्रतिबंध को दो हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। हमें नहीं पता कि अरब देश कतर के बारे में अपने दावों के ब्यौरे सार्वजनिक क्यों नहीं करते। जितना वक्त बीतता जा रहा है उतना ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के काम पर शक किया जा रहा है। अभी यही सवाल है कि वाकई यह कतर की ओर से आतंकवाद को कथित समर्थन से जुड़ी चिंताओं के बारे में था या यह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के बारे में था। ये थे अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीदर नॉर्ट के शब्द। पुर्तगाल की सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्रवक्ता ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें जंगल में लगी आग पर पानी की बौछार कर रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही गई थी। स्थानीय मीडिया ने एक एजेंसी के हवाले से पेद्रोगाओ के एक विमान हादसे की खबर लिखी थी। पुर्तगाल में लगी भीषण आग के तीसरे दिन भी हजारों दमकलकर्मी आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। पुर्तगाल की सबसे बड़ी आग में अब तक 30,000 हेक्टेयर के जंगल राख हो चुके हैं और 64 लोगों की मौत हो चुकी है। पुर्तगाल में रेडक्रॉस के प्रवक्ता डियानो अराउजो ने कहा, बीते कुछ घंटों में 27 गांव खाली कराए गए हैं क्योंकि आग अपनी स्थिति बदल रही है और दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। तो पिछले 3-4 घंटे में 27 गांव खाली कराए गए हैं जिनमें से कुछ को पुर्तगाली रेडक्रॉस ने भी खाली करवाया है। ये थे रेडक्रॉस के प्रवक्ता डियानो अराउजो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में जारी अस्थिरता के बीच प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की ओर से गोलियां चलाए जाने के आरोपों के बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश के 4 शीर्ष सैन्य कमांडर बदल दिए हैं। अप्रैल से देश में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को एक नया वीडियो सामने आया था जिसमें नेशनल गार्ड के कम से कम 3 सदस्य प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते दिख रहे थे। इसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला था। एक सैनिक को गिरफ्तार भी किया गया है। अमेरिका के जॉर्जिया में सीनेट की एक सीट के लिए विशेष चुनावों के वोटों की गिनती की जा रही है। अमेरिकी इतिहास में इसे सबसे खर्चीला और बहुप्रत्याशित संसदीय चुनाव कहा जा रहा है जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने काफ़ी पैसा खर्च किया है। यह पारंपरिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन वाला इलाका है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ abchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल रात स्थानीय समय के अनुसार 8:30 रात को शहर के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर को मार गिराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ब्रसेल्स सेंट्रल स्टेशन पर इस व्यक्ति ने एक छोटा धमाका किया, जिसके बाद वहां मौजूद सैनिकों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। ना ही कोई बड़ी घटना हुई, मगर घटना को लेकर ब्रसेल्स में चिंता फैल गई। वहां पिछले साल ही मार्च में एयरपोर्ट और एक मेट्रो स्टेशन पर धमाके हुए थे, जिनमें 32 लोगों की जान चली गई थी। पूरे ब्यौरे के साथ कुलदीप मिश्र।
ब्रसेल्स के एक रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने एक छोटा धमाका किया, जिसके बाद सैनिकों ने उसे गोली मार दी। उसकी पहचान के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। बेल्जियम के अधिकारी फिलहाल इसे एक चरमपंथी हमला मान रहे हैं।
About 8:30 there has been a small or there has been an explosion in a central station here in Brussels.
8:30 के बाद एक छोटा यहाँ ब्रसेल्स के सेंट्रल स्टेशन पर एक छोटा धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद वहाँ मौजूद सैनिकों ने संदिग्ध को गोली मार दी। इस घटना से कोई और हताहत नहीं हुआ। इसे आतंकी हमला माना जा रहा है। ये थे सरकारी अभियोजक कार्यालय के प्रवक्ता एरिक वॉन्डर सिप्ट के शब्द। कई स्थानीय मीडिया संस्थानों ने चश्मदीदों के हवाले से लिखा है कि संदिग्ध हमलावर ने विस्फोटक बेल्ट पहना हुआ था और धमाके से पहले उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था। हालांकि पुलिस प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक चश्मदीद अराश आजमी धमाके के ठीक बाद स्टेशन पहुंचे थे।
As we entered into the station, we were evacuated loudly by some security personnel.
जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, जोर से चिल्लाते हुए एक सुरक्षाकर्मी हमें वहां से बाहर ले गया। आसपास देखा तो सड़क पर लोग शरण लेने के लिए भाग रहे थे। हमने भी यही करने का फैसला किया। हमें नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे। एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। यूरोपीय संसद में ब्रिटेन की यूकिप पार्टी के एक सदस्य डेविड कोबर्न भी घटना के वक्त पास के एक रेस्तरां में थे। लोग बदहवासी में भाग रहे थे। हमें लगा कि कोई हथियारबंद लोग होंगे या ऐसा ही कुछ होगा, मगर वे डरे हुए थे। वे आतंकवाद या ऐसा कुछ कह रहे थे। पता नहीं भीतर क्या हुआ, मगर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। ब्रिटेन की यूकिप पार्टी के सदस्य डेविड कोबर्न के शब्द। कल की इस घटना ने ब्रसेल्स में मार्च 2016 में एयरपोर्ट और मेट्रो पर हुए चरमपंथी हमले की याद दिला दी, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रसेल्स यूरोप में तथाकथित इस्लामिक स्टेट चरमपंथी गुट का एक महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है। गुट के ब्रसेल्स सेल ने ही नवंबर 2015 में पेरिस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी।
ब्रसेल्स में आत्मघाती हमलावर को मार गिराया गया।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी अवधारणा सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जब वो वर्ष 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने गए थे। उसी साल संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तीसरे योग दिवस पर आज नरेंद्र मोदी लखनऊ में योग दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ होंगे। हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र भी वहां मौजूद हैं। समीर कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं कैसा मन रहा है लखनऊ में योग दिवस?
जी पूर्व योग दिवस तो यहां मन रहा है और लोग सुबह से, चूंकि 4 बजे से करीब हम लोग भी आए हुए हैं और तब से ही यहां पे आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री अभी बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, पहुंचे नहीं अभी मंच पर और लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम शुरू होना था 6:30 पर ही और प्रधानमंत्री अब इस वक्त पहुंच रहे हैं मंच पर, उसके बाद शायद ये कार्यक्रम शुरू होगा। 80 मिनट का ये कुल कार्यक्रम है और ऐसी बात है कि अगर 10 मिनट शुरू हो रहा है तो देरी से खत्म भी होगा। और 51,000 लोगों के आने की, इस कार्यक्रम में शामिल होने की, जो कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो रहा है, शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। लोग आए भी हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लोगों ने उत्साह अगर शायद आपको सुनाई भी पड़ रहा हो, लोग नारेबाजी भी रह रहे के कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ में सुबह 4 बजे से ही बारिश भी हो रही है और बीच बीच में काफी तेज बारिश भी हो रही है।
तो क्या घेरा हुआ है पंडाल या खुला मैदान है? अगर खुला मैदान है और बारिश हो रही है तो बड़ा क्या कहें उसे, पचपच सा हो गया होगा।
बिल्कुल, मैं आपको यही कहने वाला था, केवल नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री का मंच है जिस पर प्रधानमंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ योग करेंगे, सिर्फ वो मंच ढका हुआ है और बगल में यानी मंच के बाईं ओर कुछ वीआईपी शायद पंडाल एक छोटा सा लगा हुआ है, उसके अलावा पूरा का पूरा मैदान खाली है। मीडिया कर्मी भी जहाँ पे कवर कर रहे हैं वो भी पूरा आसमान खुला हुआ है, लोग बारिश में भीग रहे हैं। एक दिलचस्प बात आपको बताएं कि जो चटाइयां आई हुई थी यहाँ पे बैठ करके योगा करने के लिए, लोगों ने उसको अपने
छाता बना लिया
है, छाता बना लिया है ताकि वो कुछ हद तक बारिश से अपने को रोक सकें, बचा सकें।
जी, तो बिल्कुल अलग तरह का मन रहा है लखनऊ में योग दिवस। ऐसे 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है यही सोचकर 21 जून को मनाया गया है। देखिए शायद मौसम बाद में साथ दे, हालांकि कार्यक्रम तो सीमित समय का ही होगा, लेकिन लोगों के पास पूरा दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का। धन्यवाद बहुत बहुत समीर आपका लखनऊ से। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए बीजेपी को अपने सहयोगी शिवसेना का समर्थन मिल गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहले थोड़ी असहमति के संकेत दिए थे, मगर कल पार्टी ने कोविंद का समर्थन जताया। वहीं रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी तारीफ भी की। इसके बाद से ही चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड कोविंद का समर्थन कर सकती है। बीबीसी संवाददाता हरिता कांडपाल ने जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागे से कल संपर्क किया और पूछा कि क्या उनका समर्थन पक्का है।
नहीं, अभी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने पटना में कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, सभी वरिष्ठ सहयोगी साथियों के साथ सलाह मशवरा करके हम पार्टी का रुख तय करेंगे और 22 तारीख को जो 7 पार्टी मीटिंग है उसमें अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। इतना जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि श्री कोविंद का राज्यपाल के रूप में जो कार्यकाल है वो सराहनीय है, उन्होंने राज्य सरकार के साथ कोऑपरेट किया है, उन्होंने राजभवन का कभी दुरुपयोग नहीं होने दिया। जिस तरह से नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर मुख्यमंत्रियों के साथ नॉन कोऑपरेशन का और कॉन्स्पिरेसी का सेंट्रल गवर्नर हाउस बन गए हैं, ऐसा भी उन्होंने नहीं होने दिया है। और उन्होंने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को मिसेस गांधी के साथ भी और लालू प्रसाद जी के साथ भी शेयर किया है।
कई जगह ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दलित कार्ड खेला है रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाकर, आप क्या कहेंगे?
राष्ट्रपति के चयन को लेकर के दलित और गैर दलित के सवाल नहीं उठने चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। कोविंद जी के सामने बड़ा सवाल भागवत जी और मनमोहन वैद्य ने खड़ा किया है दलित और पिछड़ी जातियों के आरक्षण का, कि इनको रिव्यू होना है, तो क्या कोविंद जी राष्ट्रपति बनकर उन सवालों को आंसर करेंगे, क्योंकि वो अंबेडकर के भी मानने वाले हैं।
ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले कहा था कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार हम लाएंगे और सभी पार्टियों से बातचीत की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अब विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये एक तरफा फैसला था और एक तरह से बीजेपी ने चौंका दिया है सबको ये घोषणा करके।
चौंका नहीं दिया है, उलझा दिया है। आदर्श स्थिति थी कि श्री कोविंद के नाम की मोहर विपक्षी दलों से लगवाने का प्रयास करते, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अच्छा चयन है उनका, तो इस अच्छे चयन के लिए गलत तरीका अख्तियार करने की क्या आवश्यकता थी, जब हमने खुद ही पहल की थी इस बात की कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार होना चाहिए और अमित शाह जी द्वारा बनाई गई कमेटी के लोग जब विपक्षी दल के नेताओं से मिल रहे थे तो हम आशा कर रहे थे कि शायद सर्वानुमति बनेगी, उन्होंने एक अच्छे काम को भी गलत अंजाम दे दिया।
जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी से बात कर रही थी हरिता कांडपाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन को कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से फौरन चेन्नई ले जाया गया और अब आज उन्हें कोलकाता ले जाया जाएगा, जहां उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पूरा ब्यौरा इमरान कुरैशी से।
आज तक भारत में किसी जज ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज चिन्नस्वामी स्वामीनाथन कर्णन ने बनाया। मई के 9 तारीख से कल रात तक मतलब 6 हफ्तों से बंगाल और तमिलनाडु की पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। भारत के चीफ जस्टिस जेएस केहर के नेतृत्व में 7 जजों की खास बेंच ने इनको कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। कर्णन ने 9 मई को कोलकाता से चेन्नई पहुंचे, पत्रकारों से बात की और फौरन लापता हो गए। कल रात को उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि देते हुए उनके वकील पीटर रमेश कुमार ने बीबीसी को बताया,
तमिलनाडु सीआईडी पुलिस अंडर द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु,
तमिलनाडु की सीआईडी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार उनको गिरफ्तार किया है। उनको कोलकाता ले जाया जाएगा और जेल में ले जाने से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये थे पीटर रमेश कुमार के शब्द। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा सुनवाई थी उस समय कर्णन कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन 12 दिन पहले वो रिटायर हो गए। उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक चिट्ठी में 20 जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश के खिलाफ जस्टिस कर्णन उल्टा सुप्रीम कोर्ट के जजों के ही खिलाफ आदेश देते गए। एक समय उन्होंने ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो दलित समुदाय के हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवमानना का दोषी ठहरा दिया और 6 महीनों की सजा भी सुना दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेल में दोषी पाए गए न्यायाधीशों को रखने के लिए कोई नियम नहीं है। बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बीबीसी को बताया कि पूर्व जज को एक अलग सेल में रखा जाएगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के अखबारों की बड़ी खबरों पर। कुलदीप मिश्र अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुलदीप, क्या खबरें हैं आज के अखबारों में खास?
जी, आज 3 बड़ी खबरें जो ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। एक तो कोच अनिल कुंबले का इस्तीफा लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा विश्व योग दिवस की तैयारियों की तस्वीर के साथ कुछ लोगों ने छापा है, और जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी, ये तीनों खबरें मोटा मोटी पहले पन्ने पर हैं। एक चीज़ और, जो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर जो सरगर्मियाँ हैं वो भी लगभग सभी अखबारों ने कवर की हैं। द हिंदू ने लिखा है कि शिवसेना और पीडीपी भी एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन देने को तैयार हो गई है। अमर उजाला ने लिखा है कि दक्षिण के समर्थन से बड़ी जीत की ओर बढ़ा राजग। अच्छा। ये अमर उजाला का शीर्षक है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एंगल दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष में और पार्टियों ने पूछा है कि एक दलित उम्मीदवार का विरोध हम कैसे कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार वाली बात को हेडलाइन में दिया है। उन्होंने, नीतीश कुमार ने इस मसले पर जो सस्पेंस बनाकर रखा है कोविंद की तारीफ करने के बावजूद, उसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीर्षक बनाया है।
जो अपने प्रोग्राम में भी था, केसी त्यागी ने कहा कि अभी तय होना बाकी है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार
तारीफ की है उनकी। बिल्कुल। तो हिंदी अखबारों में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार की बेनामी संपत्तियां अटैच किए जाने की खबर भी प्रमुखता से छापी गई है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स ने इसे सबसे बड़ी खबर, लीड खबर बना करके छापा।
हमारे यहाँ भी एक रिपोर्ट है, थोड़ी देर में चलेगी, लेकिन अखबारों में तो है ही। जी,
इंडियन एक्सप्रेस पर ही एक दिलचस्प खबर पहले पन्ने पर है कि गोरखालैंड की मांग को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए गाने कौन लिखने जा रहा है, वो हैं प्रशांत तमांग। कोलकाता पुलिस के वो कांस्टेबल थे, 2007 में एक सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में आए थे और वो जीत भी गए थे। वो इस आंदोलन से जुड़े हैं और इससे सहानुभूति रखते हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं अब इसके लिए गाना लिखने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स, एक्सप्रेस और ने इन दोनों में ही ये खबर है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 15 मुसलमान नौजवान जिन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था चैंपियंस ट्रॉफी में,
उसके बाद उनके खिलाफ
उन राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया।
जी जी, ये खबर है हमारे bbchindi.com के पन्ने पर। पढ़ना चाहें तो आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। धन्यवाद कुलदीप। कुलदीप ने जैसा अभी अखबारों में बताया कि दार्जिलिंग इलाके में पिछले हफ्ते 10 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है और उसमें हिंसा भी हुई है। मौजूदा संकट की जड़ में है पश्चिम बंगाल सरकार का एक आदेश जिसने स्कूलों में बांग्ला भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि ये आदेश पहाड़ी इलाकों के लिए अनिवार्य नहीं है। मगर भाषा को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने एक बार फिर से अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को तेज कर दिया है। कितना संवेदनशील है भाषा का मुद्दा दार्जिलिंग में, इसकी पड़ताल की दार्जिलिंग में रवि प्रकाश ने।
भाषा को लेकर कोई बड़ी लड़ाई किसी एशियाई देश में नहीं हुई। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स में भाषा को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही है। नेपाली भाषा के सम्मान के बहाने गोरखालैंड की इस लड़ाई में पहाड़ के समस्त लोग शामिल हैं। तब पाकिस्तानी बंगालियों की लड़ाई के बाद बांग्लादेश के तौर पर उन्हें अलग मुल्क मिल गया, जबकि दार्जिलिंग हिल्स के लोग गोरखालैंड नाम के अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इन दोनों लड़ाइयों का सबसे बड़ा फर्क यही है। दार्जिलिंग हिल्स में सर्कुलेटेड नेपाली अखबार हिमालय दर्पण के संपादक शिव छेत्री मानते हैं कि सरकार को बांग्ला भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। शिव छेत्री ने बीबीसी से कहा,
किसी भी जाति को मानने के लिए आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए, वो भाषा को कर दीजिए और जाति अपने आप मर जाएगा। देखिए, एक भाषा आदमी का दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बांग्लादेश का गठन भाषा को लेकर हुआ, ये तो गवर्नमेंट को, राजनीतिक दल को उसको समझना चाहिए। भाषा के साथ में कोई भी खिलावट नहीं है, किसी भी भाषा के साथ। भाषा अपना मदर लैंग्वेज, और माँ को आप अपमान करेंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही।
भारत में नेपाली बोलने वाली सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है। 2001 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 10.23 लाख लोगों की मातृभाषा नेपाली है। अब यह संख्या 12 लाख से भी अधिक हो चुकी है। दार्जिलिंग से सटे सिक्किम राज्य के 62.6% लोग नेपाली बोलते हैं। इन दोनों राज्यों में नेपाली मातृभाषा के लोगों का बहुमत है। साल 1977 से ही यहाँ के लोग नेपाली को 8वीं सूची में शामिल कराने की मांग करने लगे थे। 1992 में भारत सरकार ने उनकी मांग मान ली। बांग्ला की चर्चित लेखिका शर्मिष्ठा बाग भी पहाड़ पर भाषा को लेकर चल रहे आंदोलन को जायज मानती हैं। शर्मिष्ठा बाग ने बीबीसी से कहा,
गोरखालैंड की ये आंदोलन देखकर हम लोगों को ये याद आ रहा है कि जो 70 के दशक में जो बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था बांग्ला भाषा के लिए, सबको पता है कि देश जब भाग हुआ था, भाषा के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं। गोरखालैंड की वासियों ने जो आंदोलन अपनी भाषा के लिए कर रहे हैं, ये पूरा ही जायज है।
नेपाली व अंग्रेजी के चर्चित स्तंभकार स्वराज थापा कहते हैं कि हम अगर नेपाली बोलते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम नेपाली हो गए। दरअसल भारत हमारा देश है और हमें भारतीय होने पर गर्व है। हम दूसरी भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन नेपाली हमारी मातृभाषा है और इस पर आघात हम सहन नहीं कर सकते। स्वराज थापा ने बीबीसी से कहा,
भाषा तो हमारी मातृभाषा है। जब मैं जन्म लिया, सबसे पहला शब्द तो मेरी माँ का शब्द जो है मेरी मातृभाषा में निकला है, तो मातृभाषा इसीलिए ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि जब मातृभाषा के ऊपर कोई प्रहार होता है या राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिससे कि हमको लगता है कि हमारी मातृभाषा खतरे में है, तो जाहिर है कि जो लोग हैं यहाँ पे वो इसके खिलाफ उठेंगे।
बहरहाल भाषा की लड़ाई लंबी चलेगी। नेपाली के बहाने शुरू लड़ाई ने गोरखालैंड की मांग को हवा दे दी है। पहाड़ पर खराब मौसम के बावजूद लोग सड़कों पर हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। इन्हें सभी पार्टियों का समर्थन हासिल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस निर्णय के बाद पहाड़ी इलाके में सक्रिय तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार को चाहिए कि वह तत्काल इस मुद्दे पर बातचीत का माहौल बनाए। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए दार्जिलिंग में।
आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार को कल आयकर विभाग की तरफ से 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का नोटिस भेजने की खबर आई। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और बेटे तेजस्वी यादव के अलावा लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भी आयकर विभाग ने बेनामी लेन देन कानून के तहत आरोप लगाए हैं। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नोटिस के बारे में सवाल करने पर मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरे ब्यौरे के साथ पटना से नीरज सहाय।
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की सांसद पुत्री मीसा भारती और उनके दो बेटों की बेनामी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई से मंगलवार को बिहार की सियासत गर्म रही। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सांसद मीसा भारती को पूछताछ के लिए 2 बार समन भेजा गया था, उसके बावजूद जब सुरक्षा संबंधित कारण बताकर पूछताछ के लिए वे उपस्थित नहीं हुई, तब सोमवार को दिल्ली में उनका एक फ्लैट और एक फार्म हाउस अस्थायी रूप से जब्त करने की कार्रवाई की गई। साथ ही मीसा भारती के अलावा उनके भाई और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तथा स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की खबर छाई रही। जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐसी किसी कार्रवाई से मंगलवार को इनकार किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कहते हैं कि
लगातार कोई आदमी, कोई जिसका अस्तित्व नहीं है, वो आरोप लगा देता है, झूठ का अफवाह फैला देता है और उस चीज को अगर आप लोग आकर के बार बार सफाई लेने आएगा, किस बात का हम सफाई दे भाई।
दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार की कथित बेनामी संपत्ति को लेकर कुछ और खुलासे किए और लालू परिवार के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई होने की भी पुष्टि की।
टैक्स विभाग मिशेल पैकर्स से जुड़े मामले पर कार्रवाई कर रहा है। लालू जी की रेल मंत्री या स्वयं के मुख्यमंत्रित्व काल में दो जमीन लिखवा लिया और मेरा आरोप है कि ये जो जमीन लिखवाया गया है, मैं लिखवाया शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि प्रलोभन देकर, रेलवे में नौकरी देकर, ठेका देकर या अन्य तरीके से ओबलाइज कर और उसके बदले में और ये जमीनें लिखवाई गई है।
मोदी पिछले 75 दिनों से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति के बारे में प्रमाणिक दस्तावेज जारी करने का दावा करते रहे हैं, जिससे लालू परिवार बचाव की मुद्रा में आ गया है और उनके दोनों पुत्र संकट से बचने के लिए पूजा पाठ में लग गए हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लालू परिवार का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। नीरज सहाय, BBC पटना।
और अब समय है खेल समाचारों का, चर्चा क्रिकेट की। ब्रिटेन में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के लिए रवाना हो गई है, मगर कोच कुंबले साथ नहीं है। अनिल कुंबले ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में ट्विटर पर जो लिखा उससे स्पष्ट है कि कप्तान के साथ उनकी नहीं निभ रही थी। उन्होंने कहा कि BCCI ने उनसे कहा कि कप्तान को उनके स्टाइल और उनके कोच बने रहने को लेकर कुछ आपत्तियां हैं, इसलिए उन्हें लगा कि पद छोड़ना ही बेहतर है। पूरे ब्यौरे के साथ राखी शर्मा।
It's a great honor for me to be part of the Indian team again.
पिछले साल बहुत सी उम्मीदों के साथ भारत के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले ने भारतीय कोच पद का कार्यभार संभाला था। तब कम ही लोगों को उम्मीद रही होगी कि उनका और भारतीय टीम का साथ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अनिल कुंबले ने कल भारतीय टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया। बतौर कोच कुंबले का कार्यकाल 20 जून को खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें भारतीय टीम के साथ आगामी वेस्टइंडीज दौरे पर भेजा जा रहा था। भारतीय टीम कल वेस्टइंडीज के लिए रवाना तो हुई, लेकिन अनिल कुंबले के बिना। काफी दिनों से खबरें थी कि भारतीय कप्तान विराट कोहली और कुंबले के बीच मतभेद हैं और कोहली सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण की BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति के सामने कुंबले के विरोध में अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड में ही मौजूद रहे भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है,
मैं बहुत बार अनिल से भी मिला, मैं विराट से भी मिला, मैदान पर भी था और पूरी होम सीरीज में तो हर मैच में मैदान पर था और बाहर से जब देख रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि कोई मनमुटाव है, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत चीजों को लेकर डिफरेंसेस हैं। अब अचानक जब ये न्यूज आई तो फिर थोड़ी सी अफवाहें भी, ये तो अफवाहों का बाजार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो फिर वो तो गर्मा गया था कि भाई ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, शुरुआत से नहीं बनी, कुलदीप यादव को लेकर कोई उस पर भी कुछ इशू रहा है। पहली बार जब ये बात पता चली तो मैं थोड़ा सा बहुत चक्का रह गया था कि ये ऐसा क्या था जो पिछले 6 महीने में मैं नहीं देख पाया और अचानक इतनी जोर से ये निकल कर आई है बात।
अनिल कुंबले जून 2016 में रवि शास्त्री और टॉम मूडी जैसे 57 दिग्गजों को पीछे छोड़ भारतीय टीम के कोच बने थे। माना जा रहा है कि कुंबले और कप्तान कोहली के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, ऐसे में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण की क्रिकेट सलाहकार समिति को नए कोच के लिए जल्द ही फैसला लेना होगा। आकाश मानते हैं कि इस वक्त इन तीनों के कंधों पर भारतीय क्रिकेट के भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी है।
भारतीय क्रिकेट का भविष्य उनके हाथ में है, क्योंकि इस बार जो कोच बनेगा वो 2 साल के लिए मिनिमम बनेगा। अब आप उसका 1 ईयर रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2017 आ चुका है, 2019 में विश्व कप है, और अगर आप विश्व कप तक का समय नहीं देंगे तो फिर तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
ये थे आकाश चोपड़ा और ये थी रिपोर्ट राखी शर्मा की। और बताते चलें कि हॉकी में लंदन में हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल के एक मैच में कल भारत को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। नीदरलैंड्स ने भारत को 3-1 से हरा दिया। अब गुरुवार को क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार कुलदीप मिश्र से।
BBC समाचार। बेल्जियम में राजधानी ब्रसेल्स के एक रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर को सैनिकों ने गोली मार दी। पुलिस ने कहा है कि वह विस्फोटक बेल्ट जैसी चीज पहने हुए था और उसने एक छोटा धमाका किया था। कतर संकट की मार अब पालतू पशुओं पर भी पड़ रही है। सऊदी अरब ने कतर नागरिकों के ऊँटों और भेड़ों को अपनी चरागाहों से निकालकर कतर सीमा पर लाकर छोड़ दिया। वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की ओर से गोली चलाए जाने के आरोपों के बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश के 4 शीर्ष सैन्य कमांडर बदल दिए हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में सीनेट की एक सीट के लिए विशेष चुनावों के वोटों की गिनती की जा रही है। अमरीकी इतिहास में इसे सबसे खर्चीला और बहुप्रत्याशित संसदीय चुनाव कहा जा रहा है। BBC समाचार।
तो बीबीसी समाचारों के साथ ही ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होंगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप दुनिया भर की पल पल बदलती खबरें और उनका विश्लेषण देख पढ़ और सुन सकते हैं। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक चसरोटिया ने। अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।